अयांश विनित से कुछ न कहकर मन ही मन खुद से बोला, जो भी हो रहूंगा तो मैं अयांश मेहरा ही। कल भी अपनी मर्जी से करता था कहता था और आज भी वैसा हूँ। अगर इस सबको तुम बदलाव समझ रहे हो और इसका ताज आरवी को पहनाना चाहते हो तो बेशक पहना दो। उसके साथ बोलता हूँ अच्छा लगता है, पर बदल गया उसके आने से ऐसा कुछ नहीं है। मुझे वो जैसी है वैसी ही पसंद है और जैसा हूँ वैसा पसंद करे, यही चाहता हूँ। तुम सब मुझे उतना ही जान समझ सकते हो जितना मैं चाहता हूँ। मैं क्या हूँ पूरी तरह से ये कोई नहीं जान सकता। मुझे किससे कितना कब कहना है ये मैं खुद डिसाइड करता हूँ। आज भी मैं तुम्हें उतना ही बताता हूँ जितना ज़रूरी है और तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें खुशी दे बस। हमराज और अपना हमदर्द सिवाय खुद के मैंने आज तक किसी को नहीं बनाया, सक्षम वालिया को भी नहीं। तुम्हारा सोचना है ये सिर्फ। हाँ, मैं उसे सबसे ज़्यादा बातें शेयर करता था, बट पर्सनली मैंने खुद को उसके सामने भी पूरी तरह कभी नहीं रखा, रख ही नहीं पाया। क्यों, आज समझ आता है, दगाबाज साबित जो होने वाला था वो। उसकी औकात सिर्फ धोखा देने की थी, मुझे बर्बाद तो वो सात जन्म भी न कर पाए। एटीट्यूड वाले लहजे में, कोई कितना ही हितेशी हो, खुद को पूरी तरह खोल कर रख दूँ, नेवर। गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हुए, तभी विनित ने अयांश के बाँह पर हाथ रखा। अयांश धीरे चलाना, बहुत काम है मुझे, नहीं चला सकता धीरे। और हाँ सुनो, आज तुमने उसका जिक्र किया, पर आज के बाद गर ऐसा हुआ, अयांश बोल रहा था, विनित ने कान पकड़ लिए। सॉरी अयांश, माफ़ कर दे, पक्का नहीं होगा। मुझे पता है तुमने गुस्से में स्पीड बढ़ा ली है, पर प्लीज़ गुस्सा मत करो, फिर पक्का ना करूँगा ऐसा। अयांश ने कुछ ना सुना, उसने स्पीड वैसे ही रखी और गाड़ी ऑफिस के बाहर जाकर ही रुकी। अयांश फट से उतरकर ऑफिस में चला गया। विनित ने मुंह से फूंकते राहत की सांस ली। मैं दी और सबको बोलता हूँ उसका जिक्र नहीं, आज मुझसे ये गलती कैसे हो गई, मैं कैसे मेरे और अयांश के बीच उसे ले आया। पक्का आगे से नहीं होगा जो आज हुआ। आई एम रियली सॉरी यार, बस मीटिंग से पहले अयांश का गुस्सा गायब और मूड ठीक हो जाए, वरना मैं तो गया। बचा लो प्रभु, हाथ जोड़ते हुए। हॉस्पिटल, ये लोग कहाँ चले गए? बोला था यहीं रिसेप्शन के पास ही रहना, आ रही हूँ, पर इनको एक जगह टिकना ही नहीं होता। पता नहीं इंटर्न के लिए आते हैं यहाँ या घूमने। आरवी इधर उधर देखते अपने साथीगणों को ढूंढ रही थी। वो मुड़ी ही तभी कोई अचानक उसमें आ भिड़ा और उसके साथ ही ज़मीन पर जा गिरा। आरवी आ करते हुए अपनी कोहनी मसलती है और नीचे बैठी ही जिस शख्स से टकराई थी, जो साइड में ही गिरा था, उसकी तरफ देखती है कि तभी वो सॉरी बोल वहाँ से उठकर रिसेप्शन की तरफ भाग कर चला गया। आरवी को शक्ल तो ना दिखी, दिखाई दिया तो ब्लैक कोट पहना हुआ वो भागता हुआ शख्स, जो वहाँ से उठकर रिसेप्शन की तरफ भागा और फिर वहाँ से कुछ पूछ राइट तरफ भागकर चला गया। आरवी उसे जाते देख नीचे से उठी और कोहनी मसलते बोली, अजीब आदमी था, भाग तो ऐसे रहा था जैसे ये हॉस्पिटल नहीं रेलवे स्टेशन हो और उसकी ट्रेन छूट रही हो। माना जल्दी होगी, पर थोड़ा तो ध्यान रखे, हॉस्पिटल में हो तो क्या हड्डियाँ तोड़वा लूँ अपनी। अपनी कोहनी देखते, छिल भी गया है थोड़ा, ऐसी चोट तो मिस्टर मेहरा से कितनी बार टकराई हूँ, कितनी बार गिरी हूँ तब भी ना आई। हाँ वो बात अलग है, पहली बार उन्होंने धक्का दिया था तब चोट लगी थी काफ़ी, बट वो टकराने से तो नहीं थी। खैर आरवी, इन्होंने सॉरी तो कहा, उनसे तो इसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती, बस ये किसी और से न टकराए, मैं तो बच गई, और किसी की पक्का हड्डियाँ तोड़ ही देंगे, भाग भी तो बुलेट ट्रेन की तरह है। तभी आरवी को उसके साथी गणों ने आवाज़ दी और वो उनकी तरफ चली गई और सब वहाँ से दूसरी ओर चले गए जहाँ उनको अपना अपना काम करना था। थोड़ी देर बाद आरवी एक पेशेंट को चेक कर एक वार्ड रूम से निकली। जितना आसान लगता है उतना है नहीं आरवी, बट कोई ना, जब चुना है इस राह पर चलना तो कर लेंगे पूरी निष्ठा के साथ। जो डॉक्टर्स करते हैं उन्होंने भी तो सीखा ही है, हम भी सीख जाएंगे और फिर तो सब आ जाएगा करना, आदत भी हो जाएगी। नया नया काम तो पहले पहले टफ लगता है, पर इतना भी मुश्किल नहीं कि हो ना पाए। तभी किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आरवी को सुनाई दी, जो कि सामने वाले वार्डरूम से आ रही थी। आरवी उस तरफ बढ़ी, डोर ओपन था। दरवाजे पर खड़ी अंदर झांक कर देखा तो बेड पर एक 5-6 साल की बच्ची जोर जोर से रो रही, जिसके दोनों घुटनों पर चोट लगी हुई थी, जिनसे खून बह रहा था। जैसे ही डॉक्टर अपना हाथ उसकी तरफ लाती वो और जोर जोर से रोने लगती, खुद को टच तक नहीं करने दे रही थी। उसकी एक साइड लेडी डॉक्टर खड़ी थी तो दूसरी साइड काला कोट पहने एक शख्स, जिसकी आरवी की तरफ पीठ थी। उसे देख आरवी खुद से बोली, ये तो वही है जिनकी वजह से मैं गिरी, भागते भागते इस बच्ची को भी लगता है गिरा दिया, तभी इसे इतनी चोट आई है, मैं तो बच गई पर यह छोटी बच्ची जख्मी हो गई। तभी वो काले कोट पहने वाला शख्स बेड पर लेटी बच्ची के हाथ अपने हाथों में लेकर उसे चुप करवाने लगा, बच्चा प्लीज चुप हो जाओ, आप गुड गर्ल हो ना, गुड गर्ल रोते नहीं, देखो ये डॉक्टर आंटी अभी आपकी चोट अभी ठीक कर देंगी, प्लीज ड्रेसिंग करवा लो। पर वो बच्ची चुप होने के बजाय और रोने लगी। ये देख वो शख्स अपनी साइड ही खड़ी लड़की पर चिल्लाया जो नजरें झुकाए खड़ी थी। ध्यान नहीं रख सकती थी तुम? ख्याल रखने को रखा गया है तुमको जिया का? ऐसे ख्याल रखा जाता है? कैसी केयरटेकर हो तुम? एक तो तुम्हारे रहते गिर गई जिया, ऊपर से तुम इसे हॉस्पिटल ले आई जिसके नाम से भी ये डरती है। सॉरी सर, मैं ध्यान ही रख रही थी। पर जिया फ्लोर पर भागने लगी। मैंने मना भी किया और रोकने भी आई, पर नहीं सुना जिया ने और गिर गई, जिस कारण हाथों पर थोड़ी पैरों पर ज्यादा चोट आ गई। मुझे तो हाथ भी नहीं लगाने दिया। मैंने आपको कॉल भी किया बट लगा नहीं। खून बह रहा था तो मैं ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल ले आई। ब्लीडिंग रोकना थी तो जरूरी था, बट जिया ड्रेसिंग को नहीं मानी तो फिर कॉल किया मैंने आपको। वो लड़की एक ही सांस में बोल रही थी कि उस शख्स ने उसकी बात काट दी। शट अप, घर पर भी फिर से ट्राई कर सकती थी तुम। और मेरा कॉल नहीं लगा तो ऑफिस का नंबर तो दिया है ना मैंने तुम्हें। कहा है ना कभी मेरा फोन न लगे तो वहां कॉल कर लेना। और डॉक्टर घर पर भी आ सकता है, हॉस्पिटल आने की जरूरत ना थी। तभी डॉक्टर बोली, मिस्टर बंसल आप उन्हें बाद में डांट लेना, बच्चे की चोट देखिए, ब्लीडिंग हो रही है जिसे रोकना जरूरी है, वो भी अभी। कुछ कीजिए जो मैं बच्चे की ड्रेसिंग कर सकूं। अगर आप बच्चे को घर ले जाकर डॉक्टर बुलवाकर ड्रेसिंग करवाएंगे तब तक बहुत ब्लड निकल जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें अभी ब्लड रोकना होगा, खुला घाव ज्यादा पेन होगा, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। या जिया सुनो, देखो ब्लड निकल रहा है ना बच्चा, इसे रोकना होगा, प्लीज मान जाओ, देखना बिल्कुल पेन नहीं होगा, दवा लगवा लो, आप मेरा अच्छा बच्चा होना, चाचू की बात मान लो स्वीट हार्ट, मिस्टर बंसल ने जिया को समझाते हुए कहा। बट जिया का रोना और बढ़ गया। वो रोते रोते सुबकियां भरते बोली, नो चाचू, नो पेन होगा, मुझे घर जाना है, दादू दादी के पास घर जाना है, अपने हाथ बेड पर मारते हुए। तभी आरवी आगे चली गई और डॉक्टर की साइड खड़े होते जिया की तरफ देखते बोली, जिया तो यहाँ से घर नहीं जा सकती। ये सुनते ही सब आरवी की तरफ देखने लगे। जिया भी सुबकियां भरते आरवी की ओर देख रही थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी आरवी ने उसे बिठाया और सामने बैठ उसका चेहरा हाथों में भर धीरे से बोली, आपको घर जाना है बट आप जाएगी कैसे? एक सीक्रेट बताएं यहाँ का, प्लीज बताना मत किसी को, हम ना सिर्फ आपको बता रहे हैं, आप क्यूट बच्चे हो ना, हम नहीं चाहते क्यूट सी जिया को इस हॉस्पिटल जैसी गंदी जगह रहना पड़े। आप सुनोगी सीक्रेट? घर जाना है ना अभी आपको अपने चाचू के साथ? जिया ने सुबकियां भरते हाँ में सिर हिलाया। तभी आरवी उसके आंसू पहुंचते बोले, पहले रोना बंद कीजिए, अगर उसने देख लिया आपको रोते हुए तो यहाँ से जाने नहीं देगा। ये सुनते ही सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। जिया ने अचानक रोना बंद कर दिया और आरवी से मासूमियत भरी प्यारी सी आवाज में बोली, कौन नहीं जाने देगा?
वो एक डेविल है, बहुत बुरा है, अच्छा भी है, हम उसकी बात मान लेना तब तो कुछ नहीं कहता, ना माने तो बहुत गुस्सा करता है। ये जो हॉस्पिटल है ना, ये भी उसका ही है, और यहाँ का रूल है बच्चा, अगर किसी को चोट लगी है तो वो जल्दी से ड्रेसिंग करवा ले और भाग जाए यहाँ से, यहाँ ज्यादा टाइम रुके तो वो बाद में जाने नहीं देता। देखो मुझे भी चोट लगी थी, मैंने भी दवा लगवा ली, अपनी कोहनी पर लगे बैंडेज को दिखाते हुए। मैं भी जा रही थी जल्दी से घर, बट आपको देखा रोते हुए, आप बात ना मान रहे। मान लो जिया, मैं नहीं चाहती क्यूट सी जिया यहाँ रहे, हॉस्पिटल आपको अच्छा नहीं लगता ना? मुझे भी नहीं लगता, हम दोनों भाग जाते हैं जल्दी से यहाँ से, वो डेविल आ गया तो जाने नहीं देगा, करवा लो प्लीज ड्रेसिंग, आरवी जिया को समझाते हुए बोली। आरवी की बात सुन जिया ने मिस्टर बंसल की तरफ देखा और मासूमियत से बोली, सयम चाचू, ये हॉस्पिटल सच में डेविल का है, मैंने जल्दी से ड्रेसिंग ना करवाई तो वो जाने नहीं देगा हमें यहाँ से, हमें यहीं रहना पड़ेगा क्या चाचू? आरवी ने सयम की ओर देखा जो उसे ही देख रहा था, तो आरवी उसे देख बोली, हाँ तो पूछ लो अपने चाचू से, तभी तो कह रहे हैं प्लीज जिया मान जाओ, और उनको भी डांट रही है उस लड़की की तरफ इशारा करते कि जिया को हॉस्पिटल क्यों लाई, उनको भी नहीं पता था ये हॉस्पिटल डेविल का है, बट सच में उसी का बच्चा, ड्रेसिंग होगी तभी यहाँ से जा पाओगी, वरना नहीं, नामे सिर हिलाते। ये सुन जिया फिर आरवी से बोली, आपको चोट कैसे लगी? आरवी संयम की ओर देखते, आप जैसे भाग कर गिर गए, मुझे और किसी ने भागते हुए गिरा दिया, अब समझ आया वो इतना भाग क्यों रहे थे, जिया की गाल छूते हुए। तभी संयम को पता चला कि भागते हुए जिसे उसने गिरा दिया था वो आरवी थी, तो वो जिया का सिर सहलाते बोला, ये सही कह रही है बच्चा, डेविल आए उससे पहले हम ड्रेसिंग करवा कर चलते हैं ना यहाँ से। ये सुन जिया ने डॉक्टर की ओर देखा और फिर वापस आरवी की ओर, उसे ही डॉक्टर जैसी देख बोली, आप डॉक्टर हो? क्रमशः।